यशाया अध्याय 48। यशिया की पुस्तक अध्याय 48 में परमेश्वर कहता है कि वो किस प्रकार अपनी प्रजा को अपने अधीन अर्थात एकमात्र पवित्र यहोवा के अधीन पुनः स्थापित करेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर याकूब के घराने का पुनरुद्धार करेगा। यशाया अध्याय 48 पद 1। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम जो इसराइली कहलाते हो, तुम इसराइल के नाम से पुकारे जाते हो। इसराइल का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर द्वारा शासित लोग। सुंदर नाम है, परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित एक व्यक्ति। उसका नाम इसराइल था। ये नाम याकूब को परमेश्वर ने दिया था जब वो संपूर्ण रात उसे मलयुद्ध करता रहा और अंत में उसने आत्मसमर्पण किया तथा रोया और उसे याचना की। उसने कहा, मुझे आशीष दिए बिना तू नहीं जा सकता। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने उत्तर दिया, एड़ी पकड़ने वाला। तब उसने कहा, तू अब से आगे एड़ी पकड़ने वाला नहीं कहलाएगा, तू अब से आगे परमेश्वर द्वारा नियंत्रित कहलाएगा। अपने संपूर्ण जीवन वो धोखेबाज रहा था। अपने संपूर्ण जीवन वो अपनी युक्तियों पर निर्भर रहा था। वो अपने संपूर्ण जीवन चालबाजी, दोगली चाल, कुटिलता, षड्यंत्र रचने आदि में रहा था। परंतु यहोवा ने उससे कहा, तू अब षड्यंत्रकारी और चालबाज नहीं कहलाएगा, अब तू परमेश्वर द्वारा नियंत्रित व्यक्ति कहलाएगा। इस प्रकार इसराइल एक आकर्षक नाम है, अर्थात परमेश्वर द्वारा नियंत्रित जन। अतः उसने कहा, अब से तू इसराइल कहलाएगा। यशाया अध्याय 48 पद 1। और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इसराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। तुम इस नाम से तो बुलाए गए हो, परंतु सच में हो नहीं। तुमने यहोवा के नाम की शपथ तो खाई है, परंतु न्याय के अधीन नहीं। सच तो यह है कि तुम परमेश्वर द्वारा शासित नहीं हो। तुम्हें केवल नाम प्राप्त है, परंतु वो नाम वास्तविकता नहीं बना है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ये प्रथा प्रचलित है। अनेक लोग अपने आप को मसीही जन कहते हैं, परंतु उनके काम देखे जाए तो मसीही चरित्र प्रदर्शन की अपेक्षा अन्य सब कुछ है। वे केवल नाम धारण किए हुए हैं। इस प्रकार वे इसराइली कहलाते थे। तुम इसराइल के नाम से जाने जाते हो। तुम्हारे नाम का अर्थ है परमेश्वर के शासन के अधीन, परंतु तुम उसके शासन के अधीन नहीं हो। तुमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। आप अपने को मसीही जन कहते हो, परंतु आप वास्तविक में मसीही का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। आप शारीरिक लालसाओं के पीछे भाग रहे हैं, अपनी नैतिक अशुद्धियों में जी रहे हैं, गंध में जीवन निर्वाह कर रहे हो, फिर भी आप कहते हैं हम मसीही के अनुरूप है। ये जीवन तो मसीह के अनुरूप है ही नहीं। अतः परमेश्वर इसराइलियों को ये नाम धारण करने के लिए झिड़क रहा है। सत्य तो यह है कि उन्होंने इसराइली नाम ना तो सच्चाई और ना ही धार्मिकता के निमित्त अपनाया था। यशाया अध्याय 48 पद 2 से लेकर 4 तक। क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इसराइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली, मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हटीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस या गर्दन में लोहे की मांसपेशियां। यशाया अध्याय 48 पद 4, और तेरा माथा पीतल का है। कठोर मन वाले लोगों से यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तुम तांबे के समान अकड़े हुए हो। यशाया अध्याय 48 पद 5। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू ये कह पाए कि ये मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से ये हुआ। परमेश्वर ने कह दिया है कि वो बाबुल के साथ क्या करेगा और किस प्रकार इसराइल को बंधुआई से छुड़ाकर लाएगा, परंतु ऐसा न हो कि वे अपनी मूर्तियों को उठाकर कहे, मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। कैसी अद्भुत बात! और वे इसका श्रेय फिर से मूर्तियों को दे। यही कारण है कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही से बता दिया था कि वे जाने कि ये सब तो यहोवा पहले से ही कह चुका था। यशाया अध्याय 48 पद 6 और 7। तूने सुना है, सो अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, वे अभी अभी सिरजी गई है, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। दूसरे शब्दों में यहोवा कहता है कि उसने तो घटनाओं के होने से पूर्व ही कह दिया था कि ऐसा होगा, अन्यथा जब वे घटनाएं घटित होंगी तब लोग कहें, हम तो जानते थे कि ऐसा होगा, आप तो खुद समझ सकते थे कि इन परिस्थितियों का नतीजा क्या होगा। आज भी अनेक जन परमेश्वर संबंधित बातों के विषय इस स्वभाव को अपनाए हुए हैं, वे कहते हैं, ये तो दिख ही रहा था कि ऐसा होगा। क्या परमेश्वर वास्तव में ज्ञान रखता है? यशाया अध्याय 48 पद 8। हां, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मैं तुझे जानता था और ये भी जानता था कि ऐसा ही होगा। यशाया अध्याय 48 पद 9। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। ये केवल मेरी दया और मेरा अनुग्रह है कि मैंने तुझे काट नहीं डाला। परमेश्वर हमसे भी यही कहता है, तुम लोग अकड़ी गर्दन रहे, तुम्हारे हृदय कठोर रहे, परंतु परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ना छोड़ा, उसने केवल अपने नाम के कारण हमें काट नहीं डाला। यशाया अध्याय 48 पद 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। कहने का अर्थ यह है कि उनका शोधन घोर यातनाओं द्वारा होना था। बाबुल में दी गई यातनाएं इन लोगों के लिए परमेश्वर के शोधन प्रक्रिया थी। परमेश्वर ने दुखी भट्टी में उनको परखा। कोई ऐसा जन है जो ये बता सके कि यहूदियों से अधिक यातनाएं संसार में किसने सही है? वे जहां भी गए उन्हें यातनाओं को सहन करना पड़ा, उन्हें सताया गया, उनसे घृणा की गई, परमेश्वर कहता है कि उसने दुखों की भट्ठी उनके लिए चुनी है। यशाया अध्याय 48 पद 11, अपने निमित्त, हां अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। बाइबल स्पष्ट कहती है, जिससे अधिक दिया गया है उसे अधिक लिया जाएगा। प्रकाश में रहकर पाप करना अज्ञान में रहकर पाप करने से कहीं बड़ा है। लूका अध्याय 12:47-48 पद, और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। जितना ज्यादा परमेश्वर को जानोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन के ऊपर होगा। परमेश्वर को जानने के बाद और परमेश्वर का प्रकाशन पाने के बाद किया हुआ पाप बहुत गंभीर होता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुना था कि वे उसकी ज्योति को संसार में लाए, उसके सत्य को संसार में प्रस्तुत करें। उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं प्राप्त थी, नियम प्राप्त थे, व्यवस्था पूरी की पूरी प्राप्त थी। परमेश्वर ने उन्हें ये सब दिया था, तथापि वे सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर कनानियों की मूर्तियों की पूजा करने लगे। वे बाल और मोलेक और अमोन की पूजा करने लगे। वे उनकी मूर्तियां बनाकर उनको दंडवत और उनकी आराधना करने लगे। इस प्रकार उनका पाप अन्य जातियों से बड़ा था। इसके कारण उनका दंड भी अधिक कठोर था। परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध करने के उद्देश्य से ज्यादा पीड़ा दी, ताकि वे पुनः परमेश्वर के लोग कहलाए। और परमेश्वर ने उनके बारे में कहा, अपने निमित्त, हां अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। यशाया 48 अध्याय पद 12-13, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इसराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली और मेरे ही दैने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है, देख तो इन छोटी छोटी बेजबान मूर्तियों की पूजा कर रहा है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती है। तुम्हें उन्हें उठाकर ले जाना होता है। मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर हूं। तुम्हें शुद्ध करने के उद्देश्य से तुम्हें क्लेशों में लाया हूं। आप मेरी सुनो, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलता है, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली और मेरे ही दैने हाथ ने आकाश फैलाया। इसका क्या अर्थ निकलता है? परमेश्वर ने अपने दैने हाथ से जगत को फैलाकर विस्तार किया है। जब मैं स्कूल में था तब हमें ये सिखाया गया था कि ब्रह्मांड 4 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई की तब हमें ये सिखाया गया था कि विश्व 6 अरब प्रकाश वर्ष की त्रिज्या में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने वर्ष मैंने स्कूल के अध्ययन में लगाए उतने वर्ष में ब्रह्मांड बहुत अधिक विस्तृत हो गया था। आज कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ आकाश गंगाएं देखी है जो 50 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे जान पाते हैं कि वे इतनी दूर है, परंतु ये उनका दावा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विज्ञान के नाम में अत्यधिक बढ़ाने चढ़ाने और अनुमान लगाने का काम होता है। जैसे जावा का आदि मानव वो पिल्टडाउन आदि मानव अफवाह थी। पूर्णतया विज्ञान के नाम में झूठ। एक दिन मैं एक प्रसिद्ध पुरातत्व वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अवशेषों के समय के बारे में बातचीत कर रहा था। वो पुरातत्व वैज्ञानिक मेरा प्रोफेसर और ट्यूटर भी था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। वो भी मुझ में रुचि रखते थे। उनका नाम था डॉक्टर एल्ब्रो। उन्होंने कहा, चार्ल्स देखो, मान लो कि हम यहां इस क्षेत्र में अर्थात सबीना कैनियन में खुदाई कर रहे हैं और खोते खोते हमें एक खोपड़ी मिलती है जो हमें अपने आगे की खुदाई और अभियान के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। अतः हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये एक महत्वपूर्ण खोज है। यहां आदिवासियों की खोपड़ियां पाई जा चुकी है और ये भी ज्ञात किया जा चुका है कि वे 4000 वर्ष पूर्व यहां रहते थे। अब यदि मैं कहूं कि ये खोपड़ी 2000 वर्ष पुरानी है तो वो कौतूहल का कारण नहीं होगा, क्योंकि हमसे पहले किसी ने मुख्य समाचार दिया था कि 4000 वर्ष पुरानी खोपड़ी पाई गई है। अतः ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे उस खोपड़ी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना होगा। मैं उसके अंश कार्बन तिथि निर्धारण प्रयोगशाला में भेजता हूं और तब तक भेजता रहता हूं जब तक कि मुझे मन चाहा युग न ज्ञात हो जाए। तब मैं घोषणा करता हूं कि हमें 5000 वर्ष पुरानी एक खोपड़ी पाई है और हम सिद्ध करते हैं कि आदिवासी यहां 5000 वर्ष पूर्व रहते थे। हमें अकस्मात ही सबसे पुरानी खोपड़ी मिल गई और ये समाचार बन गई। अब सब उसके बारे में जानना चाहेंगे, अतः सब उसमें रुचि दिखाते हैं। और उसने बताया, इस प्रकार हमें अपनी खुदाई और खोज करने के लिए पैसा प्राप्त करना आसान हो जाता है। अधिकांश खोपड़ियों का समय इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। यही बात उस वैज्ञानिक के साथ भी सही बैठती है जो कहता है, मैंने एक नई आकाश गंगा की खोज की है जो 6 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पहले ही वैज्ञानिक 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगा की खोज कर चुके हैं। इस प्रकार कोई एक व्यक्ति एक दिन प्रयास करता है और मान लो कि यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि वो 50 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो अब उन्हें ब्रह्मांड का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करना होगा। ये सिद्धांत कहता है कि ये एक बड़ा धमाका अंत में अपना रूप प्राप्त कर लेगा, तब वो वापस आने लगेगा और अंत में सब सितारे और अंधकार का छिद्र इस ब्रह्मांड में उपस्थित उसे चुंबकीय कले छिद्र में खींचते चले जाएंगे जो यहां उपस्थित है। उस छिद्र के काले होने का कारण क्या है? उसका चुंबकीय बल इतना अधिक है कि उसमें से प्रकाश का बच निकलना कठिन है। अतः इस विशाल काले छिद्र के द्वारा सब कुछ निगल लिया जाएगा और अणु इस चुंबकीय बल में अत्यधिक सघन हो जाएंगे। अब उस काले छिद्र में कुछ घटना घटेगी और बड़ा विस्फोट होगा और तब फिर से किसी ग्रह पर अनुकूल परिस्थितियों में पुनः जीवन का विकास होगा और तरल पदार्थों में अमीबा उत्पन्न होगा और अरबों वर्षों के बाद एक नया मानव इस ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर खड़ा होगा और अनुमान लगाएगा कि जो अवशेष उसे मिले हैं वे कितने पुराने हैं। अब यदि वास्तव में किसी ने 50 अरब प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगा देखी है तो उसने जो काम किया है वो ये है कि उसने परमेश्वर को उतना ही बड़ा बना दिया है। मैं तो जानता था कि यदि परमेश्वर 12 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार के ब्रह्मांड को अपने बीते से नाप सकता है तो वो बड़ा ही है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि उसने उसे अपने दैने हाथ के बीते से नापा है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर अति विशाल है। परमेश्वर, मेरे सामने एक समस्या है। ये बहुत जटिल समस्या है। मैं नहीं जानता कि तू उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं। मैं इस बक्से को उठाना चाहता हूं, ये बहुत भारी है। ओह, हम यदि अपने परमेश्वर की महानता को जान ले। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इसराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली और मेरे ही दैने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। ओह, स्वर्ग में होना तो बड़ी ही महिमा की बात होगी कि देखें परमेश्वर कैसे इन सब को आज्ञा देता है। यशाया अध्याय 48 पद 14। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वो बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने अपने लोगों से प्रेम किया है, मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, परंतु मैं कसदियों और बाबुल वासियों को दंड दूंगा। यशाया अध्याय 48 पद 15। मैंने, हां मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका नाम सुफल होगा। आइए हम पद 16 को देखें। यशाया अध्याय 48 पद 16। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आधी से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वो हुआ तब से मैं वहां हूं और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। ये कौन है जो कह रहा है? यीशु ही तो है। आपको ध्यान होगा जब यीशु फरीसियों से विवाद कर रहा था और उन्होंने कहा था हम इब्राहिम की संतान हैं, तब यीशु ने क्या कहा था? यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो मुझ पर विश्वास करते। यूहन्ना अध्याय 8 56 से 58 पद। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन को देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यहां भी वही बात दी गई है, जब से वो हुआ तब से मैं वहां हूं और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यशाया अध्याय 48 पद 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इसराइल का पवित्र है वो यूं कहता है, यीशु के अतिरिक्त और कोई नहीं। यशाया अध्याय 48 पद 17 और 18। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों की नाई होता। परमेश्वर ने कहा, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। जिस मार्ग पर तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। अनेक लोग दुखों के कारण परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं, परंतु इसका कारण है अनुभव की कमी। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। काश उन्होंने पालन किया होता। आज भी अनेक ऐसे जन हैं जो परमेश्वर के सामने व्यवस्था की तो नहीं, परंतु अपने ही नियमों और कर्मों की धार्मिकता के प्रभाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जिस प्रकार इसराइली यौम किपुर के दिन अपने भले और बुरे कामों की तुलना करते हैं और अपने भले कामों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं कि उन्हें पापों की क्षमा प्राप्त हो, परंतु परमेश्वर की वाचा में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 9 पद 22, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अतः परमेश्वर कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। यशाया अध्याय 48 पद 19 से लेकर 22 तक, और तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वो उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे ना हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला और उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान होती, परंतु दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं।